आप सुन रहे हैं सुनो किताब।
हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम देवांगना द्विवेदी एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद 9th चैप्टर ऑफ ज्योग्राफी जिसका नाम है रेगिस्तान में जीवन। तो चलिए शुरू करते हैं। हम ये जानते हैं कि रेगिस्तान में जीवन किस प्रकार होते हैं। अध्याय 5 में आप पढ़ चुके हैं कि पेड़ पौधों, पशुओं एवं मनुष्यों के लिए जल ही जीवन है। जहाँ पानी के लिए जल, जहाँ पीने के लिए जल ना हो, मवेशियों को चरने के लिए घास ना हो एवं फसलों के उगने के लिए जल ना हो, ऐसे स्थान पर किसी भी जीव के लिए जीवन कठिन ही होगा। हमने चैप्टर 5 में ये पढ़ा था, जो कि वाटर वाला चैप्टर था, कि पेड़ पौधों के लिए, जानवरों के लिए, सभी के लिए पानी बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट है। जहाँ पर पीने के लिए पानी नहीं होता है और जो पेड़ पौधे वो नहीं उग सकते, जितने भी हमारे जो जानवर हैं वो वहां पर घास नहीं चर सकते, तो वहां के लोगों का जो जीवन है वो बहुत ज्यादा कठिन होता है। अब हम विश्व के उन संस्थानों के बारे में पढ़ेंगे जहाँ लोग अत्याधिक कष्टकारी तापमान में भी जीना सीख चुके हैं। इनमें से कुछ स्थान आग की तरह गर्म है तो कुछ बर्फ की तरह ठंडे हैं। ये विश्व के रेगिस्तानी क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों में कम वर्षा, विरल वनस्पति एवं चरम तापमान होता है। तापमान के आधार पर रेगिस्तान गर्म या ठंडे हो सकते हैं। इन स्थानों में जहाँ कहीं भी थोड़ा बहुत जल उपलब्ध होता है, लोग वहां कृषि करने के लिए बस जाते हैं। तो हम ये जानेंगे कि पूरे विश्व में ऐसी जगहों पर जहाँ इतना ज्यादा हार्श जो टेम्परेचर है उसके बावजूद लोग वहां पर जीना सीख चुके हैं। कुछ जो स्थान होते हैं वो आग की तरह एकदम गर्म होते हैं, कुछ एकदम बर्फ की तरह ठंडे होते हैं। तो बेसिकली जो रेगिस्तान होता है वो दो कैटेगरी में कैटेगराइज्ड है, गर्म रेगिस्तान और ठंडे रेगिस्तान। इन क्षेत्रों में बारिश बहुत कम होती है, वनस्पति तो बिल्कुल होती ही नहीं है और जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम होता है, वेदर इट बी हॉट और वेदर इट बी कोल्ड। और टेम्परेचर के हिसाब से ही रेगिस्तान जो है गर्म या ठंडे होते हैं। तो जहां पर इसमें थोड़ा बहुत पानी अगर होता है उपलब्ध, जो थोड़ा बहुत अगर मात्रा में, तो लोग वहां पर खेती किसानी करने के लिए उसी के आसपास बस जाते हैं। नाउ कम टू दिस शब्दावली रेगिस्तान। यह एक शुष्क प्रदेश है जिसकी विशेषताएं अत्यधिक उच्च अथवा निम्न तापमान एवं विरल वनस्पति है। चलिए तो अब हम पढ़ते हैं गर्म रेगिस्तान। सहारा के बारे में। विश्व एवं अफ्रीका महाद्वीप के मानचित्र को देखिए। उत्तरी अफ्रीका के बड़े भूभाग पर फैले सहारा के रेगिस्तान का पता लगाएं। यह विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। यह लगभग 8.74 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। क्या आपको याद है कि भारत का क्षेत्रफल 3.2 लाख वर्ग किलोमीटर है? सहारा रेगिस्तान 11 देशों से घिरा हुआ है। ये देश हैं अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लिम्बिया, माली, मैरिटानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनिशिया एवं पश्चिमी सहारा। तो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा जो डेजर्ट है, जो हॉट डेजर्ट है, दैट इज सहारा। आप जब अफ्रीका के कॉन्टिनेंट में देखेंगे तो आपको पता चलेगा। और ये जो रेगिस्तान है इसका जो पूरा क्षेत्रफल है वो है 8.40 लाख किलोमीटर। आपको याद होगा कि हमारे पूरे भारत का क्षेत्रफल इतना नहीं है, ये काफी कम है, 3.2 लाख वर्ग किलोमीटर है। सहारा जो है 11 देशों से घिरा हुआ है जिनके यहाँ पर आपको नाम दिखाए गए हैं। रेगिस्तान के बारे में सोचते समय आपके मस्तिष्क में तुरंत ही रेत का दृश्य उभरता है, परंतु सहारा मरुस्थल बालू की विशाल परतों से ढका हुआ ही नहीं, वरन वहां बजरी के मैदान और नग्न चट्टाने सतह वाली उत्थित पठार भी पाए जाते हैं। ये चट्टानी सतह है कुछ स्थान पर 2500 मीटर से भी अधिक ऊंची है, मतलब यहाँ पर कुछ ऐसे चट्टाने भी पाई जाती है। यहाँ पर आपको फिगर 9.1 पर सहारा रेगिस्तान का एक पिक्चर गिवन है। नाउ कम टू नेक्स्ट पेज। चित्र 9.2 अफ्रीका महाद्वीप में सहारा। तो देखिए कितने बड़े इलाके में ये फैला हुआ है। नाउ कम टू दिस ब्लू बॉक्स। क्या आप जानते हैं, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि आज का सहारा रेगिस्तान एक समय में पूर्णतया हरा भरा मैदान था। सहारा की गुफाओं से प्राप्त चित्रों से ज्ञात होता है कि यहाँ नदियां तथा मगर पाए जाते थे। हाथी, शेर, जिराफ, शुतुरमुर्ग, भेड़ पशु तथा बकरियां सामान्य जानवर थे, परंतु यहाँ के जलवायु परिवर्तन ने इसे बहुत गर्म व शुष्क प्रदेश में बदल दिया। ये तो काफी ज्यादा अमेजिंग फैक्ट है, या इसके बारे में आपको रिसर्च भी करनी चाहिए ताकि चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। नाउ कम टू द सेकेंड ब्लू बॉक्स, क्या आप जानते हैं सहारा के अल अजीजिया क्षेत्र में जो त्रिपोली लिम्बिया के दक्षिणी भाग में स्थित है, यहाँ का सबसे अधिक तापमान 1922 में 57.7 सेल्सियस दर्ज किया गया, मतलब सबसे ज्यादा यहाँ पर रिकॉर्ड किया गया। अब आ जाइए यहाँ की जलवायु पर। सहारा रेगिस्तान की जलवायु अत्यधिक गर्म एवं शुष्क है। यहाँ की वर्षा ऋतु अल्पकाल के लिए होती है। यहाँ आकाश बादल रहित एवं निर्मल होता है। यहाँ नमी संचयन होने की अपेक्षा तेजी से वाष्पित हो जाती है। दिन अविश्वसनीय रूप में गर्म होते हैं। दिन के समय तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच जाता है, जिससे रेत एवं नग्न चट्टानें अत्यधिक गर्म हो जाती हैं। इनके ताप का विकिरण होने से चारों तरफ सब कुछ गर्म हो जाता है। रातें अत्यधिक ठंडी होती हैं तथा तापमान गिरकर हिमांक बिंदु लगभग 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। तो ये जो सहारा रेगिस्तान है, यहाँ का जो क्लाइमेट है वो बहुत ही अजीब सा है। शुरू में तो ये बहुत ज्यादा, दिन में बहुत ज्यादा यहाँ पर गर्मी होती है, इतना ज्यादा कि 50 डिग्री से भी ऊपर यहाँ का टेम्परेचर पहुंच जाता है। यहाँ वर्षा ऋतु में बहुत ही कम होती है, अल्पकाल है कि कभी हुई कभी नहीं हुई। और यहाँ जो स्काई है उसमें बादल बिल्कुल भी नहीं होते हैं। यहाँ अगर नमी बनती भी है तो वो बहुत तेजी से इवेपोरेट हो जाती है। यहाँ के दिन बहुत गर्म होते हैं और रातें बिल्कुल 0 डिग्री तक पहुंच जाती हैं, बहुत ठंडी होती हैं। फिर आ जाइए यहाँ के वनस्पति जात एवं प्राणी जात पर। सहारा रेगिस्तान की वनस्पतियों में कैक्टस, खजूर के पेड़ एवं एकेशिया पाए जाते हैं। यहाँ कुछ स्थानों पर मरुदान, खजूर के पेड़ों से घिरे हरित द्वीप पाए जाते हैं। तो सहारा डेजर्ट में ये सारे टाइप प्लांट्स पाए जाते हैं जिनको पानी की बहुत कम जरूरत होती है। खजूर इज वन ऑफ देम। ऊंट, लकड़बग्घा, सियार, लोमड़ी, बिच्छू, सांपों की विभिन्न जातियां एवं छिपकलियां यहाँ के प्रमुख जीव जंतु हैं। तो यहाँ पर ये सारे जीव जंतु पाए जाते हैं। यहाँ देखिए चित्र 9.3 में आपको सहारा रेगिस्तान में मरुद्यान का एक पिक्चर दिया है, जहां पर खजूर के पेड़ हैं और छोटी छोटी वहां पर झाड़ियां हैं। नाउ कम टू दिस ब्लू बॉक्स ऑन द राइट हैंड साइड। क्या आप जानते हैं वैज्ञानिकों को तो यहाँ से मछलियों के कंकाल भी मिले हैं। आपके अनुसार से ये क्या हो सकते हैं? तो इसलिए मिले होंगे क्योंकि यहाँ पर, जैसे हमने ऊपर अभी जाना कि यहाँ पर नदियां बहती थी, तो इसलिए यहाँ पर मछलियों के कंकाल मिले हैं। अब आ जाते हैं यहाँ के लोग कैसे निवास करते हैं। सहारा रेगिस्तान की कष्टकारी जलवायु में भी विभिन्न समुदायों के लोग निवास करते हैं, जो भिन्न भिन्न क्रियाकलापों में भाग लेते हैं। इनमें बेदुइन एवं तुआरेग भी शामिल हैं। चलवासी जनजाति वाले ये लोग बकरी, भेड़, ऊंट एवं घोड़े जैसे पशुधन को पालते हैं। तो यहाँ के जो सहारा डेजर्ट में इतनी एक्सट्रीम कंडीशन है, उसके बाद भी यहाँ पर बहुत सारी कम्युनिटीज रहती हैं और ये चलवासी जनजाति के लोग होते हैं। ये लोग बेसिकली बकरी, भेड़, ऊंट, घोड़े ऐसे पशुधन को पालते हैं। इन पशुओं से इन लोगों को दूध मिलता है। इनकी खाल से ये पेटी, जूते, पानी की बोतल बनाने के लिए चमड़ा प्राप्त करते हैं तथा पशुओं के बालों का उपयोग चटाई, कालीन, कपड़े एवं कंबल बनाने के लिए होता है। तो ये जो पशुधन क्यों बोला गया है इनको, क्योंकि इनके जो स्किन होती है उससे ये लोग क्या करते हैं, चमड़ा बनाते हैं, जिससे ये लोग पानी की बोतल बनाते हैं, पेटी बनाते हैं, जूते बनाते हैं। और इनके जो बाल होते हैं उससे ये चटाई, कारपेट, कपड़े और कंबल बनाते हैं। धूल भरी आंधियों में एवं गर्म वायु से बचने के लिए ये लोग भारी वस्त्र पहनते हैं, मतलब इतने गर्मी वाले कंडीशन से बचने के लिए बहुत भारी वस्त्र पहनते हैं। नाउ कम टू दिस ब्लू बॉक्स। जब रेत को पवन उड़ा ले जाती है तो वहां गर्त बन जाती है। जहां गर्त के भूमिगत जल सतह पर आ जाता है वहां मरुद्यान बनते हैं। ये क्षेत्र उपजाऊ होते हैं, लोग इनके आसपास निवास करते हैं एवं खजूर के पेड़ तथा अन्य फसलें उगाते हैं। कभी कभी यह मरुद्यान असामान्य रूप से बड़ा भी हो सकता है। मोरक्को में टेफिलालेट मरुद्यान ऐसा ही एक विशाल मरुद्यान है जो 13,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। तो ये बताया जा रहा है कि जब रेत हवा की वजह से एक जगह से दूसरी जगह उड़ जाती है तो जो ग्राउंड वाटर होता है वो सरफेस पर आ जाता है, जिसकी वजह से वहां पर ये फॉर्म हो जाता है, ओएसएस फॉर्म हो जाता है। सहारा में मरुद्यान एवं मिस्र की नील घाटी लोगों को निवास में मदद करती है। यहाँ जल की उपलब्धता होने से लोग खजूर के पेड़ उगाते हैं। यहाँ चावल, गेहूं, जौ एवं सेम जैसी फसलें भी उगाई जाती हैं। मिस्र में उगाए जाने वाली कपास पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर ये जो मरुधान होता है, ओएसिस होता है, और जो ये मिस्र की नीली घाटी होती है, लोगों को वहां पे रहने पर बहुत मदद करती हैं, और वो खजूर के पेड़ उगाते हैं, चावल उगाते हैं, सेम उगाते हैं, तो ऐसी फसलें वो वहां पर उगाते हैं। तेल की खोज संपूर्ण विश्व में अत्यधिक मांग वाले इस उत्पाद का अल्जीरिया, लिम्बिया एवं मिस्र में होने के कारण सहारा रेगिस्तान में तेजी से परिवर्तन हो रहा है। इस क्षेत्र में प्राप्त अन्य महत्वपूर्ण खनिजों में लोहा, फास्फोरस, मैंगनीज एवं यूरेनियम सम्मिलित हैं। तो मतलब ये जो जगह है ये पूरी तरीके से रेगिस्तान बनते जा रहा है, क्योंकि लोग तेल की खोज में यहाँ पर बहुत ज्यादा, तो थोड़ी बहुत भी 1% 0.01% जो पेड़ पौधे होते हैं उसको भी काट देते हैं। और यहाँ पर और भी अलग अलग एलिमेंट्स पाए जाते हैं, मेटल्स पाए जाते हैं, जैसे कि लोहा, फॉस्फोरस, मैंगनीज और यूरेनियम। सहारा की सांस्कृतिक जीवन शैली में भी परिवर्तन आ रहा है। आज यहाँ मस्जिदों से ऊंचे कांच की खिड़कियों वाले भवन तथा ऊंटों के प्राचीन मार्ग के स्थान पर सुपर मार्ग बन गए हैं। तो यहाँ का भी जो ट्रेडिशन है, जो जीवन शैली, काफी ज्यादा बदलता जा रहा है। आज यहाँ पर बड़े बड़े कांच की खिड़कियों वाले बड़े बड़े घर बने हुए हैं, और प्राचीन मार्ग जो ऊंटों का प्राचीन मार्ग होता था उसकी जगह पर यहाँ पर सुपर हाईवेज बन गए हैं। नमक के व्यापार में ऊंटों का स्थान ट्रक ले रहे हैं। तुआरेग लोग विदेशी पर्यटकों के लिए मार्गदर्शक का काम कर रहे हैं। आज अनेक चलवासी जनजाति के लोग शहरी जीवन की ओर जा रहे हैं, जहां वे तेल एवं गैस के कार्यों में नौकरी ढूंढते हैं। तो मतलब इनका जो लिविंग कंडीशंस है काफी तेजी से चेंज हो रहा है, जो हमें यहाँ पर बताया जा रहा है। नाउ कम टू नेक्स्ट पेज, ठंडा रेगिस्तान लद्दाख, जो कि हमारी कंट्री में है। जम्मू एवं कश्मीर के पूर्व बृहत हिमालय में स्थित लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान है। चित्र 4:10.4 10th चैप्टर में आप इसमें जानेंगे। इसके उत्तर में काराकोरम पर्वत श्रेणियां एवं दक्षिण में जास्कर पर्वत स्थित है। लद्दाख से होकर अनेक नदियां बहती हैं, जिसे सिंधु नदी प्रमुख है। ये नदियां गहरी घाटियों एवं महाखंड गार्ज का निर्माण करती हैं। लद्दाख के अनेक हिमानियां हैं, जैसे ग्रैंगी हिमानी। तो जम्मू कश्मीर के पूर्व हिस्से में बृहत हिमालय की स्थिति में जो एक लद्दाख है वो बहुत ठंडा रेगिस्तान है, और इसके उत्तर में काराकोरम पर्वत श्रेणियां हैं और दक्षिण में जास्कर पर्वत है। यहां से बहुत सारी नदियां होकर बहती हैं, जिसमें से मेन है इंडस रिवर। लद्दाख की ऊंचाई कारगिल में लगभग 3000 मीटर से लेकर काराकोरम में 8000 मीटर से भी अधिक पाई जाती है। अधिक ऊंचाई के कारण यहाँ की जलवायु अत्यधिक शीतल एवं शुष्क होती है। इस ऊंचाई पर वायु परत पतली होती है, जिससे सूर्य की गर्मी की अत्यधिक तीव्रता महसूस होती है। ग्रीष्म ऋतु के दिन तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से कुछ ही अधिक होता है, एवं रात में तापमान 0 से -30 डिग्री सेल्सियस के नीचे चला जाता है। मतलब लद्दाख की जो ऊंचाई है वो कारगिल एरिया जो है वहां पर 3000 मीटर है, और काराकोरम रेंज में वो 8000 मीटर से भी ज्यादा है। और इतनी ज्यादा वहां पर ऊंचाई है, उसकी वजह से वहां का जो क्लाइमेट है वो बहुत 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 ही ज्यादा ठंडा है, और जो हवा चलती है वो एकदम सूखी हवाएं चलती है वहां पर। यहाँ की जो हवा है वो बहुत ज्यादा पतली है, जिससे सूर्य की जो गर्मी है वो अत्यधिक तीव्रता से महसूस होती है। और गर्मी के टाइम पर यहाँ दिन में तापमान जो होता है वो 0 डिग्री से थोड़ा सा ही अधिक होता है, उससे ज्यादा नहीं। रात में तो -30 डिग्री चला जाता है। तो आप सोचिए, अगर हम नॉर्मल लोग जो कि नॉर्थ इंडिया में रह रहे हैं, नॉर्मली मिड इंडिया में रह रहे हैं, उनके लिए 0 डिग्री टेम्परेचर या 1-2 डिग्री टेम्परेचर भी कितना ज्यादा ठंडा माना जाता है, और बल्कि रात में तो यहाँ -30 डिग्री में हो जाता है टेम्परेचर। शीत ऋतु में यह बर्फीला ठंडा हो जाता है। तापमान लगभग हर समय -40 डिग्री सेल्सियस से नीचे ही रहता है। चूंकि यह हिमालय के विशिष्ट छाया क्षेत्र में स्थित है, अतः यहाँ वर्षा बहुत ही कम होती है। और जब ठंडियों का मौसम आता है तो इसका जो टेम्परेचर है -40 से नीचे ही रहता है हमेशा ज्यादातर। और ये हिमालय के क्षेत्र में है, इसलिए यहाँ पर बारिश भी बहुत कम होती है। मुश्किल से 10 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष, मतलब सिर्फ 10 सेंटीमीटर होती है पूरे साल भर में। यह क्षेत्र बर्फीली हवाओं एवं तेज जलाने वाले सूर्य ताप का अनुभव कराता है। यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि यदि आप सूर्य की धूप से इस तरह बैठे कि आपके पैर छाया में हो, तो आप एक साथ एक समय पर ही ऊष्माघात एवं तुषार उपघात से ग्रसित हो सकते हैं। नाउ कम टू दिस ब्लू बॉक्स, क्या आप जानते हैं लद्दाख को खापा चान भी कहते हैं जिसका अर्थ होता है हिमभूमि। अब आ जाइए वनस्पति जात एवं प्राणी जात पर। यहाँ उच्च शुष्कता के कारण वनस्पति विरल है। यहाँ जानवरों के चरने के लिए कहीं कहीं पर ही घास एवं छोटी झाड़ियां मिलती हैं। घाटी में शरपत, विलो एवं पॉपुलर के उपवन देखे जा सकते हैं। ग्रीष्म ऋतु में सेब, खुबानी एवं अखरोट जैसे पेड़ पल्लवित होते हैं। लद्दाख में पक्षियों की विभिन्न प्रजातियां नजर आती हैं। इनमें रॉबिन्स, रेड स्टार, तिब्बती स्नो कार्क, रैवेन एवं हूप यहाँ पाए जाने वाले सामान्य पक्षी हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो क्लाइमेट है वो बहुत ही खराब है, तो यहाँ पर कोई पेड़ पौधे तो होते नहीं है, और जानवरों के चरने के लिए भी कहीं कहीं पर बस छोटी छोटी घास की वो दिख जाती है, ग्रुप्स दिख जाते हैं तो वो चर लेते हैं वो लोग। और यहाँ पर गर्मियों के टाइम पर सेब, खुबानी और अखरोट के पेड़ काफी अच्छे पल्लवित होते हैं, वो फल देते हैं। और यहाँ पर अलग अलग टाइप्स की पक्षियां भी पाई जाती हैं। इनमें से कुछ प्रवासी पक्षी हैं। लद्दाख के पशुओं में जंगली बकरी, जंगली भेड़, याक एवं विशेष प्रकार के कुत्ते आदि पाए जाते हैं। इन पशुओं को दूध, मांस एवं खाल प्राप्त करने के लिए पाला जाता है। याक के दूध का उपयोग पनीर एवं मक्खन बनाने के लिए होता है। भेड़ एवं बकरी के बालों का उपयोग ऊनी वस्त्र बनाने के लिए किया जाता है। तो जो पक्षी वहां पाई जाती है उसमें से काफी सारी माइग्रेटरी बर्ड्स होती हैं, और जो जानवर पाए जाते हैं वो जंगली बकरी होती है, जंगली भेड़ और याक होती है। तो इनका इस्तेमाल किस चीज के लिए किया जाता है? चमड़ा बनाने के लिए, चमड़े के लिए, और दूध और मांस के लिए होता है, और पनीर वगैरह सब चीज के लिए। इनके जो फर होते हैं उससे ये लोग अपने कपड़े बनाते हैं। नाउ कम टू दिस सेकेंड ब्लू बॉक्स, क्या आप जानते हैं चिरु या तिब्बती एंटीलोप एक विलुप्त प्रायः जीव है। इसका शिकार शहतूश नामक इसके ऊन के लिए होता है, जो वजन में हल्का एवं अत्यधिक गर्म होता है। तो ये बताया जा रहा है कि एक विशेष टाइप का ये एंटीलोप है। नाउ कम टू लोग, यहाँ के लोग कैसे रहते हैं उसके बारे में हम जानते हैं। क्या आप लद्दाख एवं तिब्बत का मध्य एशिया के निवासियों के बीच कोई समानता पाते हैं? यहाँ के अधिकांश लोग या तो मुसलमान हैं या बौद्ध। वास्तव में लद्दाख क्षेत्र में अनेक बौद्ध मठ अपने परंपरागत गोपा के साथ स्थित हैं। कुछ प्रसिद्ध मठ हैं हेमिस, थिक्से, शे एवं लामा युरु। चित्र 9.5 में आपको यहाँ पर दिख रहा है थिकेस मठ। तो यहाँ पर जो लोग हैं वो ज्यादातर या तो मुसलमान हैं या फिर बौद्ध हैं, बौद्ध धर्म के हैं, और ये लद्दाख के अपने बौद्ध मठ में रहते हैं, जिसे परंपरागत गोपा का साथ, जिसको गोपा कहा जाता है। तो आप यहाँ पर 9.5 जो पिक्चर है थिकेस मठ को देख सकते हैं, थिक्से मठ को। ग्रीष्म ऋतु में यहाँ के निवासी जौ, आलू, मटर, सेम एवं शलजम की खेती करते हैं। शीत ऋतु में जलवायु इतनी कष्टकारी होती है कि लोग धार्मिक अनुष्ठानों एवं उत्सवों में अपने आप को व्यस्त रखते हैं। गर्मी के टाइम पर यहाँ के जो निवासी हैं वो आलू, मटर, सेम और शलजम की खेती करते हैं, और ठंड के टाइम पर यहाँ की जो क्लाइमेट कंडीशंस होती हैं वो इतनी ज्यादा एक्सट्रीम होती हैं कि लोग अपने आप को धार्मिक अनुष्ठानों में, उत्सवों में अपने आप को बिजी रखते हैं। यहाँ की महिलाएं अत्यधिक परिश्रमी होती हैं। वे केवल घर एवं खेतों में ही काम नहीं करती बल्कि छोटे व्यवसाय एवं दुकानें भी संभालती हैं। लद्दाख की राजधानी लेह सड़क एवं वायु मार्ग द्वारा भली भांति जुड़ी हुई है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1A लेह को जोजीला दर्रा होते हुए कश्मीर घाटी से जोड़ता है। क्या आप हिमालय के कुछ अन्य दर्रों के बारे में बता सकते हैं? यहाँ की जो महिलाएं होती हैं वो बहुत ज्यादा मेहनती होती हैं। वो घर का और खेतों का काम करने के अलावा यहाँ पर छोटी छोटी दुकानें भी चलाती हैं। और यहाँ पर यहाँ की जो राजधानी है लेह, लद्दाख की जो राजधानी कैपिटल है लेह, ये सड़क से जुड़ा हुआ है, सड़कें यहाँ पर अच्छे हैं और वायु मार्ग से भी जुड़ा हुआ है। यहाँ पर जो नेशनल हाईवे है 1A वो लेह को जोजीला दर्रा होते हुए कश्मीर की एक घाटी से जोड़ता है। नाउ कम टू नेक्स्ट पेज। यहाँ का मुख्य क्रियाकलाप पर्यटन है। देश विदेश से अनेक पर्यटक यहाँ पर्यटन के लिए आते हैं। गोम्पा दर्शन, घास के मैदानों व हिम नदों की सैर एवं उत्सवों तथा अनुष्ठानों को देखना यहाँ के प्रमुख पर्यटक आकर्षण है। मतलब यहाँ पर सबसे मेन एक्टिविटी जो होती है वो टूरिज्म है, क्योंकि लोग बहुत अलग अलग देशों से आते हैं यहाँ पर टूरिस्ट बनकर, और यहाँ पर अलग अलग वो चीजें देखते हैं कि कहाँ पर क्या हो रहा है। मतलब उनको हिम नदियां देखना और ये छोटे छोटे घास के वो देखना, मैदान ऐसे देखना, हिमनद देखना, गोपा दर्शन करना, और यहाँ के लोगों का ट्रेडिशनल एक्टिविटी देखना उनको बहुत पसंद आता है। आधुनिकीकरण के फल स्वरूप यहाँ के जनजीवन में परिवर्तन आ रहा है, लेकिन लद्दाख के लोगों ने शताब्दियों से प्रकृति के साथ समन्वय एवं संतुलन करना सीख लिया है। मतलब यहाँ पर जो इतनी टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन हो रहे हैं, उसका रिजल्ट ये हो रहा है कि यहाँ की जनजाति, जो जनजीवन है, उसमें भी काफी ज्यादा चेंजेस आ रहे हैं। लेकिन जो लद्दाख के लोग हैं, उन्होंने शताब्दियों से प्रकृति के साथ ऐसा संतुलन करना सीखा हुआ है कि वो नहीं चेंज हो सकता। जल एवं ईंधन जैसे संसाधनों की कमी के कारण ये आवश्यकता अनुसार एवं मितव्ययिता से ही इनका उपयोग करते हैं और कुछ भी व्यर्थ नहीं करते। इनको बहुत अच्छे से पता है कि हमारे पास पानी और फ्यूल की जो नेसेसिटीज है, वो जो रिसोर्सेज है, बहुत कम है। इसलिए किसी भी चीज को, मतलब आप ये समझ लीजिए कि पानी की एक बूंद तक को ये वेस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि इनको पता है कि हमारे पास रिसोर्सेज बहुत कम है। यहाँ आप चित्र 9.6 देखिए, पारंपरिक वेशभूषा में लद्दाखी महिलाएं, तो वहां का जो वेशभूषा है वो इस तरीके का होता है। नाउ कम टू दिस ब्लू बॉक्स, क्या आप जानते हैं मनाली लेह राजमार्ग 4 दर्रों से गुजरता है? रोहतांग ला, बारालाचा ला, लगुगालाचा ला एवं टंगलंग ला। यह राजमार्ग केवल जुलाई से सितंबर के बीच खुलता है, जब बर्फ को मार्ग से हटा दिया जाता है, बारालाचा ला, और जब ठंडी का टाइम होता है तब ये वापस से बंद कर दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर पूरे एरिया में बर्फ जम जाती है इसलिए। नाउ कम टू अभ्यास प्रश्न, इसमें पहला है, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसका पहला क्वेश्चन है, विश्व में कौन से 2 प्रकार के रेगिस्तान पाए जाते हैं? तो इसका आंसर है, विश्व में गर्म रेगिस्तान और ठंडे रेगिस्तान, 2 प्रकार के रेगिस्तान पाए जाते हैं। नाउ कम टू सेकेंड क्वेश्चन, सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में स्थित है? तो सहारा रेगिस्तान अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। कम टू थर्ड क्वेश्चन, लद्दाख रेगिस्तान की जलवायुगत परिस्थितियां क्या हैं? तो इसका आंसर है, लद्दाख की जलवायुगत परिस्थितियां निम्न है। पहला, यहाँ की जलवायु अत्यधिक शीतल एवं शुष्क होती है। दूसरा, लद्दाख क्षेत्र 3,000 मीटर से 8,000 मीटर तक ऊंचा क्षेत्र है, इसलिए इस ऊंचाई पर वायु की परत पतली होती है, जिससे सूर्य की गर्मी की अत्यधिक तीव्रता महसूस होती है। थर्ड, ग्रीष्म ऋतु के दिन का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से कुछ ही अधिक होता है, एवं रात में तापमान 0 से -30 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है। फोर्थ, शीत ऋतु में यह बर्फीला ठंडा हो जाता है, तापमान लगभग हर समय -40 डिग्री सेल्सियस से नीचे ही रहता है। फिफ्थ, यह हिमालय के वृष्ट छाया क्षेत्र में स्थित है, अतः यहाँ वर्षा बहुत ही कम होती है, मुश्किल से 10 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष। एंड सिक्स्थ पॉइंट इज, इस क्षेत्र में बर्फीली हवाएं चलती रहती हैं। नाउ कम टू फोर्थ क्वेश्चन, लद्दाख में पर्यटकों के लिए प्रमुख आकर्षण क्या है? इसका आंसर है, लद्दाख में पर्यटकों के प्रमुख आकर्षण केंद्र, फर्स्ट, यहाँ पर कई बौद्ध मठ और गोम्पा हैं जो पर्यटकों को आकर्षित करती है। सेकेंड, यहाँ पर कई आकर्षित घास के मैदान एवं हिम नदियां स्थित हैं। थर्ड, कई बौद्धिस्ट यहाँ के उत्सवों तथा अनुष्ठानों को देखने आते हैं। नाउ कम टू फिफ्थ क्वेश्चन, सहारा रेगिस्तान के लोग किस प्रकार के वस्त्र पहनते हैं? तो इसका आंसर है, सहारा रेगिस्तान के लोग धूल भरी आंधियों एवं गर्म हवाओं से बचने के लिए भारी वस्त्र पहनते हैं। कम टू क्वेश्चन नंबर 6, लद्दाख में उगने वाले पेड़ों के नाम बताएं। इसका आंसर है, लद्दाख के घाटी क्षेत्र में शरपत, विलो एवं पॉपुलर वृक्ष मिलते हैं। ग्रीष्म ऋतु में सेब, खुबानी एवं अखरोट जैसे वृक्ष मिलते हैं। नाउ कम टू सेकेंड क्वेश्चन, सही उत्तर चिन्हित कीजिए। इसमें पहला है, सहारा अफ्रीका के किस भाग में स्थित है? दक्षिणी, उत्तरी, पश्चिमी। इसका आंसर है उत्तरी। नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज, सहारा किस प्रकार का रेगिस्तान है? ठंडा, गर्म, मृदु। तो इसका आंसर है गर्म। कम टू थर्ड क्वेश्चन, लद्दाख रेगिस्तान के अधिकांश निवासी हैं। फर्स्ट ईसाई एवं मुसलमान, दूसरा बौद्ध एवं मुसलमान और तीसरा ईसाई एवं बौद्ध। तो इसका आंसर है बौद्ध एवं मुसलमान। कम टू फोर्थ, रेगिस्तान की विशेषताएं हैं विरल वनस्पति, अधिक वर्षण, अल्प जलवाष्पन। तो इसका आंसर है विरल वनस्पति। कम टू फिफ्थ क्वेश्चन, लद्दाख में हेमिस प्रसिद्ध है, मंदिर, चर्च, बौद्ध मठ। तो इसका आंसर है बौद्ध मठ। कम टू फिफ्थ क्वेश्चन, मिस्र निम्नलिखित फसल के लिए प्रसिद्ध है, गेहूं, मकई, कपास। तो इसका आंसर है कपास। नाउ कम टू थर्ड क्वेश्चन, निम्नलिखित स्तंभों को मिलाकर सही जोड़े बनाइए। पहला है मरुद्दान, जल के साथ गर्त। सेकेंड बेदुइन, जिसका आंसर है सहारा। थर्ड तेल, जिसका आंसर है लीबिया। फोर्थ ग्रांगी, जिसका आंसर है हिमनद। एंड फिफ्थ लामा यूरु, जिसका आंसर है बौद्ध मठ। नाउ कम टू फोर्थ क्वेश्चन, कारण बताइए। इसमें पहला है रेगिस्तान में अत्यल्प वनस्पति होती है। तो इसका कारण है फर्स्ट रेगिस्तान में वर्षा काफी कम होती है, सेकेंड रेगिस्तान में रेत अधिक होती है तथा मिट्टी का अंश काफी कम होता है जिसके कारण भी वनस्पति कम पाई जाती है। एंड थर्ड रेगिस्तान में कुछ भाग में पर्वत पठार होते हैं, उसकी भी चट्टानें नग्न होती हैं। फोर नाउ कम टू सेकेंड क्वेश्चन, सहारा रेगिस्तान के लोग भारी वस्त्र पहनते हैं। इसका कारण है पहला इस क्षेत्र में धूल भरी आंधियां चलती हैं, इससे बचने के लिए लोग बुरका, टोपी, कुर्ता, पैजामा जैसे वस्त्र पहनते हैं। सेकेंड यहाँ दिन में गर्म तेज हवाएं चलती हैं। थर्ड रातें अत्यधिक ठंडी होती हैं तथा तापमान गिरकर हिमांक बिंदु लगभग 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाते हैं। नाउ कम टू फिफ्थ क्वेश्चन, मानचित्र कौशल, मतलब ये मैप वर्क गिवन है आपको। इसमें फर्स्ट है अफ्रीका के मानचित्र पर सहारा रेगिस्तान एवं इसके आसपास चार देशों को चिन्हित करें। सेकेंड दिया है आपको भारत के रूपरेखा मानचित्र पर काराकोरम श्रेणी, जास्कर श्रेणी, लद्दाख एवं जोजीला दर्रा को चिन्हित करें। तो ये आपके दोनों मैप वर्क हैं जो कि आपको करने हैं। फिर आ जाइए सिक्स्थ क्वेश्चन पर, आओ खेलें रेगिस्तानी खेल। कक्षा में किए जा सकने वाले इस क्रियाकलाप में सभी विद्यार्थी सम्मिलित हो सकते हैं। शिक्षक शिक्षिका रेगिस्तानी जंतुओं की सूची बनाएं। सूची में जंतुओं की संख्या उतनी ही होगी जितनी की कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या। स्तनपायी चिड़ियों एवं सरीसर्प जंतुओं की श्रेणी में जंतुओं को चुना जा सकता है। स्तनपायी जंतुओं में ऊंट, याक, लोमड़ी, भेड़, बकरी, एंटीलोप आदि। चिड़िया में रैवेन, चील, गिद्ध, टर्की आदि तथा सरीसर्प में सांप आदि प्रजातियां सम्मिलित की जा सकती हैं। प्रत्येक विद्यार्थी के लिए एक रेगिस्तान जंतु निर्धारित करें। छात्र से उस जंतु के तीन लक्षणों को सादे कागज पर लिखने के लिए कहें। विद्यार्थी 10 सेंटीमीटर × 15 सेंटीमीटर आकार में सूची पत्र का उपयोग कर सकते हैं। किस प्रकार के रेगिस्तान में ये पाए जाते हैं? अनुकूलता के प्रकार, मानव के लिए उपयोगिता जैसे प्रश्नों के उत्तर दिए जा सकते हैं। अनुमान के खेल में ये लक्षण संकेतों के रूप में उपयोग किए जाएंगे। एक बोर्ड पर तीन कॉलम बनाएं। स्तनपायी जीव, चिड़िया एवं सरीसर्प। प्रत्येक श्रेणी के नीचे कॉलम में एक कागज चिपकाएं। कक्षा को 3-4 भागों में विभाजित कर सकते हैं। इस रेगिस्तानी खेल में वे एक दूसरे के साथ स्पर्धा करेंगे। अब प्रत्येक समूह सही उत्तर जानने का प्रयास करेगा। कक्षा में समझाएं कि अनुमान करें कि कागज पर दी गई विशेषताएं किस जंतु से मिलती हैं। जैसे पहला गर्म रेगिस्तान के पशु, दूसरा रेत से बचने के लिए दोहरी बैरिनिया होती हैं, तीसरा खाल से पानी की बोतलें बनाई जाती हैं। सही उत्तर ऊंट है। विद्यार्थियों में से किसी एक ने इस जंतु पर कार्ड बनाया होगा, उस विद्यार्थी को उत्तर नहीं देना होगा। सही उत्तर के लिए 10 अंक दिए जाएंगे। इस खेल से विद्यार्थी रेगिस्तान को समझ सकेंगे। इसी खेल को आप विभिन्न प्रकार से फूल तथा लोगों के वस्त्र आदि के उदाहरण के रूप में लेकर भी खेल सकते हैं। तो ये जो एक्टिविटी है आपके टीचर्स आपको करवाएंगे, जिससे आपको ये चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग और ज्यादा अच्छे से हो जाएगी। और आपके टीचर अगर नहीं करवाएं तो उनसे बोलिएगा जरूर कि एक्टिविटी करवाएं, सो दैट आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है काफी अच्छी हो जाए, प्रैक्टिकली आपको नॉलेज हो जाए कि इस चैप्टर में आपने क्या जाना है, आपको क्या क्या पढ़ा है। आपने मतलब दो टाइप के रेगिस्तानों के बारे में जाना है, जो एक होता है ठंडा, जो कि बहुत ज्यादा ठंडा होता है, इवन गर्मी के टाइम पर भी उसमें टेम्परेचर बहुत कम रहता है, जिसमें हम जैसे नॉर्मल लोग जो कि ऐसे एरियाज में रहते हैं जो नॉर्मल कंडीशंस वाली होती हैं, मॉडरेट टेम्परेचर वाली होती हैं, हम लोग ऐसे एरियाज में नहीं रह सकते हैं। दूसरी तरफ हमने ये देखा कि गर्म रेगिस्तान होते हैं जैसे कि सहारा डेजर्ट, यहाँ पर जो वेजिटेशन होता है वो ना के बराबर होता है और दिन बहुत ज्यादा गर्म होते हैं, इतने ज्यादा कि अगर आप वो जो भारी कपड़े वो लोग वहां के पहनते हैं वैसे कपड़े ना पहनो तो आप बिल्कुल जल जाओ वहां पर। तो ये दो टाइप के रेगिस्तानों के बारे में हमने जाना था और इसी के साथ हमारी ये क्लास खत्म होती है। प्लीज कीप रिवाइजिंग।
सुनो किताब से सुनने के लिए आपका धन्यवाद।